नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप दिव्या से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राज्य में जनगणना 2027 के तहत चल रही स्वगणना का आज अंतिम दिन। कल से प्रगणक घर घर जाकर करेंगे आवासों की गणना। केंद्र सरकार ने डीजल और विमानन ईंधन पर निर्यात शुल्क में कटौती की। पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में कोई बदलाव नहीं। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर में हो रहा है महोत्सव का आयोजन। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत 40 देशों के श्रद्धालु हो रहे हैं शामिल। और काल वैशाखी के प्रभाव से प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने आज सीतामढ़ी, सुपौल, अररिया, बक्सर, पटना और कटिहार समेत आसपास के जिलों में आंधी, बारिश और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। राज्य में जनगणना 2027 के तहत चल रही स्वगणना का आज अंतिम दिन है। इसके तहत नागरिक स्वयं अपने परिवार की जानकारी ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद कल से प्रगणक घर घर जाकर नागरिकों से जानकारी लेंगे। साथ ही कल से ही आवासों की गणना का कार्य भी शुरू होगा। एक रिपोर्ट।
स्वगणना की प्रक्रिया में नागरिक सुरक्षित वेब पोर्टल se.census.gov.in पर जाकर परिवार के मुखिया का नाम और किसी भी एक सदस्य के मोबाइल नंबर से पंजीकरण कर सकते हैं। स्वगणना के बाद संबंधित व्यक्ति को एक आईडी प्राप्त होगी। प्रगणक के घर आने पर यह आईडी उन्हें उपलब्ध करानी होगी। सरकार के अनुसार स्वगणना नहीं कर पाने की स्थिति में निर्धारित अवधि में प्रगणक संबंधित व्यक्ति के घर आकर जानकारी दर्ज करेंगे। इसके बाद 2 मई से मकानों का सूचीकरण और मकानों की गणना शुरू होगी, जो 31 मई तक चलेगी। जनगणना का दूसरा चरण अगले वर्ष फरवरी में आयोजित किया जाएगा। इसमें आयु, लिंग, व्यवसाय, साक्षरता और जाति संबंधी विवरण एकत्र किए जाएंगे। इस अभियान में देश भर में 30 लाख से अधिक फील्ड वर्कर्स शामिल होंगे। समाचार कक्ष से सविता पारीक।
केंद्र सरकार ने डीजल और विमानन ईंधन पर निर्यात शुल्क में कटौती की है। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। यह कटौती आज से लागू हो गई है। वित्त मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार डीजल पर निर्यात शुल्क 23 रूपये प्रति लीटर और विमानन ईंधन पर 33 रूपये प्रति लीटर निर्यात शुल्क निर्धारित किया गया है। पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। मंत्रालय ने कहा कि घरेलू खपत के लिए स्वीकृत पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। विधान परिषद के विधानसभा कोटे की एक सीट के लिए हो रहे उपचुनाव के लिए भाजपा के सूर्य कुमार शर्मा उर्फ अरविंद शर्मा का निर्विरोध निर्वाचन तय माना जा रहा है। कल श्री शर्मा ने अपना नामांकन दाखिल किया है। कल नामांकन के अंतिम दिन किसी अन्य उम्मीदवार ने नामांकन नहीं किया है। 4 मई तक नाम वापिस लिया जा सकता है। इसके बाद इसी दिन उन्हें निर्वाचित घोषित किया जाएगा। गौरतलब है कि पूर्व मंत्री मंगल पांडे के सिवान से विधायक चुने जाने के बाद यह सीट रिक्त हुई थी। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की ओर से आयोजित होने वाली बहुविकल्पीय प्रश्न आधारित परीक्षाओं को अधिक व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाने के लिए परीक्षा पद्धति में बदलाव किया गया है। अब एमसीक्यू आधारित परीक्षा में 4 की जगह 5 विकल्प होंगे। नई व्यवस्था के अनुसार शुरू के 4 विकल्प ए, बी, सी और डी में किसी एक को उत्तर के रूप में चुनना होगा। अगर अभ्यर्थी इस प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते हैं तो उन्हें ई विकल्प का चयन करना होगा। यदि कोई अभ्यर्थी 5ों में से किसी भी विकल्प का चयन नहीं करते हैं तो प्रत्येक अनुत्तरीय प्रश्न पर निगेटिव अंक देते हुए 1/3 अंकों की कटौती होगी। ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन नियम 2026 आज से लागू हो गए हैं। यह देश में तेजी से बढ़ते ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र को विनियमित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एक रिपोर्ट।
नए नियमों के अंतर्गत ऑनलाइन पैसे वाले खेलों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। इनमें वे खेल भी शामिल हैं जो संयोग, कौशल या दोनों के मिश्रण पर आधारित हैं। इन नियमों से खेलों के विज्ञापन और ऐसे प्लेटफार्मों से जुड़े वित्तीय लेनदेन पर भी रोक लगाई गई है। नियमों के उल्लंघन पर कारावास और जुर्माने सहित कठोर दंड दिए जा सकते हैं। इन नियमों के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन एक एकीकृत नियामक के रूप में भारतीय ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण की स्थापना की गई है। नियमों के अनुसार कुछ श्रेणियों के खेलों के लिए पंजीकरण प्रणाली भी शुरू की गई है। शिकायत निवारण के लिए 2-स्तरीय प्रणाली लागू की गई है जिससे उपयोगकर्ता प्राधिकरण से संपर्क कर सकते हैं। सरकार ने कहा है कि इन नियमों का उद्देश्य एक सुरक्षित, पारदर्शी और जवाबदेह डिजिटल गेमिंग पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
प्रदेश में अंचलाधिकारियों और राजस्व सेवा से जुड़े अधिकारियों की 9 मार्च से जारी हड़ताल कल समाप्त हो गई। बिहार संयुक्त राजस्व सेवा महासंघ ने मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत और राजस्व और भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह के साथ हुई वार्ता के बाद हड़ताल समाप्ति की घोषणा की। महासंघ ने विज्ञप्ति जारी कर कहा कि सभी अधिकारी 4 मई से काम पर लौटेंगे। महासंघ के अध्यक्ष आनंद कुमार ने कहा कि सरकार ने हड़ताल अवधि में की गई दंडात्मक कार्रवाई को वापस लेने और हड़ताल अवधि को उपार्जित अवकाश में समायोजित करने का भरोसा दिया है। आज बुद्ध पूर्णिमा है। आज के दिन भगवान गौतम बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और महापरिनिर्वाण हुआ था। उन्हें बोधगया में महाबोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस अवसर पर बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर में विशेष पूजा के साथ बोधि वृक्ष की पूजा और शोभा यात्रा जैसे अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों में शामिल महाबोधि मंदिर में आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। इस दौरान आयोजित महोत्सव में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी शामिल होंगे। इसके अलावा समारोह में 40 से अधिक देशों के लगभग 10,000 श्रद्धालु और बौद्ध भिक्षु भी महोत्सव में भाग ले रहे हैं। मान्यता अनुसार इस दिन एक ग्रामीण महिला सुजाता ने बुद्ध को खीर खिलाकर उन्हें ज्ञान प्राप्ति में मदद की थी। इसी उपलक्ष्य में आज के दिन खीर प्रसाद बांटा जाता है। इधर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी महाबोधि मंदिर कॉरिडोर और विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री और स्थानीय सांसद जीतनराम मांझी, विधानसभा अध्यक्ष डॉ प्रेम कुमार, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विधानसभा अध्यक्ष डॉ प्रेम कुमार ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। काल वैशाखी के प्रभाव से प्रदेश के विभिन्न भागों में बारिश की परिस्थितियां बनी हुई हैं। आज सुबह से ही प्रदेश के कई स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज राज्य के सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, बक्सर, पटना, गया और कटिहार समेत आसपास के कई जिलों में आंधी, बारिश और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं कल कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया में भारी बारिश की चेतावनी है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 3 घंटे के दौरान गोपालगंज और पश्चिम चंपारण जिले के कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ वज्रपात की चेतावनी जारी की है। इधर लगातार हो रही बारिश के कारण प्रदेश के तापमान में कमी दर्ज की गई है। विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा कि अगले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की संभावना है। इसके बाद तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल मोबाइल आधारित आपदा संचार प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। यह प्रणाली दूरसंचार विभाग द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA के सहयोग से विकसित की गई है, ताकि नागरिकों को समय पर महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाई जा सके। NDMA एक टेलीमैटिक्स विकास केंद्र द्वारा विकसित एकीकृत अलर्ट सिस्टम को सफलतापूर्वक चालू कर दिया है। यह प्रणाली अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा अनुशंसित कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल पर आधारित है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार कल बिहार आ रहे हैं। श्री कुमार इस दौरान बिहार और झारखंड में मंत्रालय के विभिन्न इकाइयों के अधिकारियों के साथ पटना में समीक्षा बैठक करेंगे। इस बैठक में पत्र सूचना कार्यालय, केंद्रीय संचार ब्यूरो, आकाशवाणी और दूरदर्शन के अधिकारी मौजूद रहेंगे। एकीकृत भुगतान प्रणाली UPI दुनिया के सबसे बड़े तत्काल भुगतान मंच के रूप में उभरी है। यह भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का आधार है। इसके शुभारंभ एक दशक बाद UPI वैश्विक तत्काल भुगतान लेनदेन के लगभग आधे हिस्से को संचालित करता है। इसकी शुरुआत 11 अप्रैल 2016 को हुई थी। UPI ने शुरुआत के पहले महीने में केवल 373 लेनदेन किए थे। वित्त वर्ष 2025-26 में UPI लेनदेन बढ़कर लगभग 24,162 करोड़ हो गई। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की इंटर और मैट्रिक की कंपार्टमेंटल परीक्षा कल से शुरू हो रही है। मैट्रिक की कंपार्टमेंटल परीक्षा 6 मई तक तथा इंटर की परीक्षा 11 मई तक दो पालियों में संचालित होगी। कदाचार मुक्त परीक्षा के आयोजन के लिए विभिन्न जिलों में परीक्षा केंद्रों पर तैयारी पूरी कर ली गई है। आज विश्व श्रमिक दिवस है। श्रमिक आंदोलनों और विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं में कामगारों के योगदान को रेखांकित करने के लिए प्रत्येक वर्ष 1 मई को श्रमिक दिवस मनाया जाता है। इसे मई दिवस के रूप में भी जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के मौके पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विधानसभा अध्यक्ष डॉ प्रेम कुमार, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव ने श्रमिक भाइयों और बहनों को शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा कि किसी भी राष्ट्र के निर्माण में श्रमिकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इस मौके पर राजधानी पटना समेत प्रदेश भर में विभिन्न संगठनों की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। शिवहर की एक अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के दो दोषियों को 10-10 वर्ष की सजा सुनाई है। न्यायालय ने 10,000 रूपये का जुर्माना भी लगाया है। मधेपुरा जिले के गम्हरिया थाना क्षेत्र के बबरी गांव में अतिक्रमण हटाने गए दंडाधिकारी और पुलिसकर्मियों पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। इस घटना में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। शिवहर की जिलाधिकारी प्रतिभा रानी को एग्री स्टैक परियोजना के अंतर्गत फॉर्मर रजिस्ट्री में प्रथम स्थान हासिल करने के उपलक्ष्य में सम्मानित किया गया। पटना स्थित अधिवेशन भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने उन्हें प्रशस्ति पत्र के साथ 1.5 लाख रूपये की प्रोत्साहन राशि का चेक प्रदान किया। सुपौल जिले के कुनौली में सशस्त्र सीमा बल, नेपाल एपीएफ और ग्रामीणों के बीच आपसी समन्वय बैठक आयोजित की गई। बैठक में सीमा क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और आपसी सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की गई। आईपीएल क्रिकेट में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से होगा। मैच जयपुर में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के साथ हुई बैठक की खबर को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, मुख्यमंत्री का पंचायतों में शिविर लगाकर 30 दिनों में लोगों की समस्याओं का समाधान करने के निर्देश। दैनिक जागरण ने परिवहन विभाग के निर्णय पर लिखा है, एक मुश्त जमा करें ई चालान, 50% तक जुर्माना होगा माफ। दैनिक भास्कर ने सीआईएससीई रिजल्ट में बिहार के बेहतर प्रदर्शन को तरजीह देते हुए लिखा है, गोपालगंज की शांभवी 100% अंकों के साथ नेशनल टॉपर। प्रभात खबर की सुर्खी है, एमबीबीएस परीक्षा में भारी नकल, साइंस कॉलेज ने कहा आगे का एग्जाम नहीं लेंगे। राष्ट्रीय सागर लिखता है, चुनाव आयोग ने की क्यूआर कोड आधारित फोटो पहचान पत्र मॉड्यूल शुरू करने की घोषणा। आज अखबार की सुर्खी है, इंटर मैट्रिक की विशेष और कंपार्टमेंटल परीक्षा कल से। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में जनगणना 2027 के तहत चल रही स्वगणना का आज अंतिम दिन। कल से प्रगणक घर घर जाकर करेंगे आवासों की गणना। केंद्र सरकार ने डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क में कटौती की, पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में कोई बदलाव नहीं। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर में हो रहा है महोत्सव का आयोजन। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत 40 देशों के श्रद्धालु हो रहे हैं शामिल। और काल वैशाखी के प्रभाव से प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने आज सीतामढ़ी, सुपौल, अररिया, बक्सर, पटना और कटिहार समेत आसपास के जिलों में आंधी, बारिश और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।